वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हमारे कथा सत्र का अंतिम दिवस है, तो आज भी आपने राधा कृष्ण चंद्र के दरबार में जो भी सब पधारे भक्तवृंद और मातृवृंद सभी को मैं स्कंद की तरफ से आपके स्कंद कालेवाड़ अड़ी की तरफ से और स्कंद पुणे की तरफ से स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मित्री महाराज अब मधुबन में नारद जी का उपदेश से वृंदावन मधुबन पहुंच करके जैसे जैसे नारद जी ने उनको बताए थे ठीक इसी प्रकार श्रद्धाजुक्त होकर के जमुना पुलिस पर मधुबन में उन्होंने उनका तपस्या कार्य शुरू किया। भगवान के नारायण के चतुर्भुज विग्रह बनाए, जमुना में प्रतिदिन स्नान और किसी प्रकार उग्र तपस्या उनका कल आप सुन चुके हैं। प्रथम माह में 3 दिन में एक बार केवल फल कपित्था बदनाशन बेर फल और पपीते फल खाएं। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाएं। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल पान करेंगे। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार वायु वाहक करते थे, एक बार सांस ले लें। और पांचवा महीना में सांस भी रोकती है, खड़े हो गए एक पैर पर अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जब ऐसे तप किए पांचवा महीना पूर्ण हो गया, अब सखा महीना में कंप्लीट निरुद्ध कर दिए, सांस भी लेना पर कुछ लिए ही नहीं, कुछ लाए नहीं करने के लिए निरुद्ध कर दिए, कुछ नहीं लिए, एक पैर पर एक अंगूठे पर खड़े रहे और पूरे मन और इंद्रिय को संपूर्ण बाहर से हर प्रकार से निग्रह करके केवल केंद्रित किए जो भगवान मूर्ति जिसको उन्होंने अर्चना किए थे ध्यान कर रहे थे पूर्ण एकाग्र कर लिए उसने मन इंद्रिय सब प्रकार से रुचि को उसने लगा लिया, लगा करके श्वास रुद्ध करके सब प्रकार से बंद करके जब भगवान लगाए तो इस प्रकार महाकर्मा उनका जो उग्र तपस्या के कारण और जो दास खैर मंत्र नारद जी ने दिए थे उसको अनंत निरंतर उसको जप कर रहे थे, उसके प्रभाव से उनके इतने शुद्धता आ चुका था, इतने उनको बल प्राप्त हो चुका था कि उन्होंने पांचवा महीने के बाद में लगभग जिसको भगवान कहते हैं इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरा धर्म के समान हो जाता है, मेरा धर्म को प्राप्त कर लेता है, मेरे जैसा ही लगभग हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि लोहे की छड़ी लोहा है, लेकिन अगर आप उसको कुछ समय तक आग के अंदर, अंगार के अंदर डाल के रखेंगे तो लोहा रहेगा, आग बन जाएगा, आग की तरह काम करेगा। ठीक इसी प्रकार इतने भगवत चेतनाएं भिन्न रहे बालक ध्रुव, 5 महीने के बाद लगभग वो भगवान के साथ उनका भगवतीय गुण आ चुका था, उनके अंदर पूरे भगवान में तन मन इंद्रिय सब लगा चुके थे। तो भगवान की अनुभव हर इंद्रिय में कर रहे थे। जब भी आप भगवान को देखे नहीं, जो नारद जी ने सुने अभी, सुन के बाद में इतने अनुभव इस प्रकार के भावना किए कि पूरी भगवान की सत्ता उनमें अनुभव होने लगा, जिसके कारण 6ठे महीने में जब वो खड़े थे एक पैर में, छोटे बालक 5 साल की उम्र के बालक, वो भी 5 महीना तक तो खाया क्या है, कुछ खाया नहीं, अन्न खाया ही नहीं, चलो घर बिक्रे इसे रहा है, किसे दुबला उपला कितना वेट होगा उसका, है ना। हम लोग इतने साल की उम्र हो गए, 6 फीट होकर भी 60-70 साल की वेट होता है, 60-70 किलो वेट होता है, और जो 6 महीने तक इस प्रकार डाइटिंग करेगा, वो तो डाइटिंग नहीं है तो फास्टिंग ही है, इस प्रकार फास्टिंग करेगा तो उसका वेट 6 महीने के बाद कितना होगा, 1-2-5 साल के बालक के वेट कितना होगा ज्यादा से ज्यादा, 10-12। लेकिन ये अद्भुत हुआ, 6ठे महीने में ध्रुव महाराज जब खड़े रहे, पूरी पृथ्वी टलमल होने लगा, ढल गए एक तरफ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कोई गजराज बड़े हाथी को कहीं लेकर जाते थे, रास्ते में नदी आता है, नदी में हाथी पार किसे करेगा, बड़ा नदी है, तो एक बड़े नौका में ला करके नदी हाथी की लोड करते हैं, तो हाथी कभी कभी उसका पैर इधर उधर करता है, इधर उठा के इधर रखता है तो नौका ऐसे हो जाता है, इधर करता तो इधर हो जाता है, तो पूरे पृथ्वी ऐसे होने लगा, इस तरह पूरे ढक गया, पूरा पलट गया, ऐसे हो गया। ध्रुव महाराज को ऐसे क्यों हो रहा है, गिरने करके इधर की तो पूरे इधर हो जाता है, ऐसे होने लगा, पूरे पृथ्वी टलमल होने लगा। अभी हम सुनते हैं कोई छोटी सी एक जगह में यार भूचाल हो जाता है, भूकंप होता है तो तबाही मच जाता है, तो एक जगह पर कोई एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं इलाका में हो जाता है, अगर पूरे पृथ्वी में हो जाए, पूरा वर्ल्ड में, तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ध्रुव महाराज ने, और उसके कारण कुछ नहीं था, उन्हीं के लिए 5 साल के उम्र के एक बालक खड़े हो गया था, अभी जो 6 महीने से फास्टिंग किया था, उन्हीं के इतने भार बढ़ गया, क्योंकि विश्व के भार आ गया उनके ऊपर, भगवान विश्व के स्रोत है, मूल, उन्हीं के चिंता में उन्हीं जैसा बन गया, उनके भार आ गया उसमें, जिस कारण से धरती सहन नहीं कर पाया, उनके भार बिल्कुल टलमल करने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा, तो जो धरती वासी है तो हाहाकार मच गया, उनका क्या होगा किसी पता तो है नहीं, तभी जमाने मीडिया इतना एक्टिव तो था नहीं, फोन फोन था तो किसी पता चल गया कि कारण है। तो लेकिन इसी के साथ साथ जब उन्होंने 6ठा महीना शुरू हुआ, जो वायु रुद्ध बिल्कुल कुछ रहा नहीं, वायु भी लेना बंद कर दिए, जो 5वां महीना है 15 दिन में एक बार श्वास लेते थे वो भी बंद कर दिए, टोटली लेना बंद कर दिए, निरुद्ध कर दिए सब, तो उनके निरुद्ध करने से पूरे संसार के सभी का गला चौक हो गया, देवताओं के लिए ब्रह्मांड का श्वास बंद हो गया, वायु बंद रोक दिए, अकेले एक 5 साल के बालक अकेले ब्रह्मांड के वायु को कंट्रोल कर लिया, सारे देवता लोग यहाँ तो लोग कहाँ का बोले कि सब पृथ्वी टलमल हो रहा है, उसके ऊपर से देव लोग यक्ष गंधर्व रखे, मतलब ब्रह्म लोग तक जितने भी हैं, सारे 6 लोग जो ऊपर का सब डर गए, और सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी भी स्वयं ब्रह्मा के समेत भगवान के पास गए, जाकर प्रार्थना किए सुखदेव में कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। देवता लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम ऐसा एक्सपीरियंस तो कभी नहीं किए थे कि इसे पता नहीं हटा सबका गला रुंध रहा, ऐसा कभी हुआ नहीं था। देवता लोग बोलते हैं हम भी इतिहास में कभी पढ़े नहीं सुने नहीं कि कई बड़े बुजुर्ग से सुने ऐसा भी कभी हुआ था तकलीफ ना, सभी का एक साथ में गला रुंध हो जाए ऐसे नहीं होता है। ये क्या हो गया, क्यों हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जब भगवान के पास पहुंच करके समस्त लोग रोने लगे तो भगवान ने बोले कोई बात नहीं, मुझे पता है इसका कारण क्या है। क्या कारण है? ना एक बालक उग्र तपस्या कर रहा है जिसके कारण यह अवस्था। बालक ऐसा कर रहा है इस कारण से ऐसा। तो ध्रुव महाराज का तप के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड प्रभावित हो गया, एक 5 साल का लड़का। तो इसलिए अगर कोई सचमुच इस प्रकार ध्यान करेगा तो भगवान जैसे शक्ति में मुक्त प्राप्त हो जाता है। और ये रिकॉर्ड है, देवताओं के कहने से पता चलता है कि ध्रुव महाराज के पहले और ध्रुव महाराज के बाद अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड किया ही नहीं। पहले रिकॉर्ड ध्रुव महाराज ने किया। तो भगवान को प्रार्थना करने लगे सारे देवताओं मिलकर के, सब स्तुति करने लगे। तो भगवान ने उनको आश्वासन मूलक वाक्य कहे कि आप लोग सब जाओ, डरो मत, मुझे पता है, मैं यथाशीघ्र ना यथाशीघ्र लेट मत कीजिए, मर जाएंगे सब। वो पता नहीं श्वास रुद्ध करके बच्चा कैसे जी रहा है, हम तो मरने वाले ही मर जाएंगे। तो इसी प्रार्थना की किसका गला घोट रहा है, वो कैसे प्रार्थना कर, विकल होकर प्रार्थना कर रहे थे। भगवान गुरु में अभी तुरंत एक्शन होगा, चाहिए भगवान से आशीर्वचन प्राप्त करके वापस आए देवता लोग। तो भगवान ने तुरंत अपने सबसे द्रुतगामी जान गरुड़ जी पर सवार हुए। गरुड़ जी का स्पीड आजकल जैसे हाईटेक कार निकला वो कुछ नहीं है सामने। गरुड़ जी का जो स्पीड है वो शुरुआत होता है मन की गति से। मन की गति कितना पता है? अभी आप यहीं बैठे हैं, सोचे एक सेकंड में आप आगे पहुंच सकते हैं, कोई प्लेन कहने की जरूरत नहीं, मन इतने पर ही पास पहुंच गए, फिर वापस भी आ जाए, जाके वापस आ सकते। ये है मन की गति। और गरुड़ जी का गति का जो नॉर्मल स्टार्टिंग से ही गति से शुरू होता है, वो बढ़ता है आगे से, और कितने बढ़ता है हम सोच भी नहीं सकते, हम ना सोच के बाहर। तो इस प्रकार द्रुतगामी जान भगवान ने सवार होकर के नीचे आए। आकर के भगवान तो अंतर्जामी है, हमको सब पता है कहाँ है, और अपने अपने घर तो है मधुबन, नित्य सानिध्यम हरे, हरि हमेशा वही रहते हैं, उन्हीं के घर पर वो बालक तपस्या कर रहा है। तो सीधा लैंडिंग किए उन्हीं के सामने, वो टीले पर ध्रुव टीला पर आकर के गरुड़ जी से उतर करके गाड़ी पार्किंग करके उनके सामने खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव महाराज देखते नहीं, क्योंकि वो तो आंख बंद करके वो तो ध्यान अवस्थित तदगत न मनसा पश्यंती जंग जोगी न, बिल्कुल ध्यान अवस्था में अपने हृदय कमल में वही ईश्वर मूर्ति जो नारद जी से उन्होंने जिसका वर्णना सुने थे, जिसको तैयार करके जिसको आराधना किए थे, वही अर्चित आराधित विग्रह, वही श्री हरि विग्रह जिसको आराधना किए थे शुरुआत में, उसी को अपने अंतकरण अंतकरण में अपने हृदय कमल में बिल्कुल ध्यान नेत्र में देखना। ध्यानावस्थित तदगत न मनसा पश्यंती जन जोगिना, जोगी लोग जिसको देखते हैं, इस जोगियों के जो आराध्य देव उन्हीं को आज अपने हृदय के अंदर देख रहे हैं, और बाहरी इंद्रिय तो सब बंद है, कुछ नहीं, सब अंतर्मुख हो चुका है। इस प्रकार अंतर्मुख होने से परमात्मा दर्शन होता है। हम जितने हैं इधर, हमारे पास भी इंद्रिया है, जो भी बालक थे उनके पास जो जो इंद्रिया था हमारे पास भी है, लेकिन हमारे इंद्रिया सब कुछ सब बहिर्मुख है। हमारे आंख जो है हमें सब बाहरी वस्तु देखना चाहता, आंख के अंदर की आंख को भी देखा नहीं, देखा और कभी देखा नहीं। कान जो है केवल बाहरी शब्द सुनता, मुख जो है केवल बाहरी स्वाद लेता, स्पर्श इंद्रिय जो है बाहरी स्पर्श लेता, घ्राण इंद्रिय केवल बाहर की गंध लेता है, अंदर के कुछ न अंतर। जब तक अंतर्मुख नहीं होगा तो बाहर में तो बाहर ही नहीं होगा। तो इतने अंतर्मुख हो चुके थे तो सब बंद था बाहर का दरवाजा। तो भगवान आके सामने खड़े हैं साक्षात वैकुंठपति, लेकिन उनको पता क्या, वो तो अपने आनंद से है, वो तो और कोई स्थिति में बिल्कुल अंदर से देख रहा है, पूर्ण भगवान दर्शन कर रहा है अंदर से। तो कितने स्थिति में, किस स्थिति में होंगे वो, भगवान देखो बहुत भला, मैं आकर वहां खड़ा हूँ, देखो मुझे घुसता ही नहीं, सूर्य से मेरे लिए इतना तोड़ करके आया, मेरे नाम पे जप किया, मुझे आराधन किया, सब क्या, मैं आकर खड़ा हूँ, वो तो धन मुझे दिखता भी नहीं। भगवान को पता थे वही तो अंदर बैठे हैं, वही तो अंदर थे, वही को दिख रहा था। भगवान बोले, लेकिन भगवान के स्वभाव है जब भक्तों के ऊपर अति वत्सल करते, अति कृपा करते हैं, तो केवल अंदर से परमात्मा रूप में नहीं बैठते हैं, बोलते हैं ये तो साखी भगवान से आ करके उनको देखेंगे, लाड़ प्यार करेंगे, दरस परस दे करके उन्हें कृतार्थ ना करने से उनके वत्सलता का काम नहीं बन पाता, ना तो वत्सल कैसे बनेंगे। तो इसलिए वो आ गए बाहर वैकुंठ से आकर, जो वैकुंठ में थे वहां भी थे, आकर बाहर खड़े हुए, लेकिन धूप देख नहीं रहा है, बोले माया देख नहीं रहा है किसी घर का बैठा, तो स्विच ऑफ कर दी। अंदर का जो शो चल रहा था ना वो शो बंद हो गया, उन्हीं के हाथ में स्विच है और किसी के हाथ में नहीं, हम नहीं कर सकते, ध्रुव भी नहीं कर सकते, ये बटन उन्हीं के पास है, कंट्रोलर वही रेगुलेटर लिंक कर रहे हैं। तो अंदर का शो ऑफ कर दिया, जो अंदर का बटन ऑफ हो गया, शो ऑफ हो गया, तो ध्रुव जी तो देख रहे थे भगवान दर्शन, भगवत दर्शन कर रहे थे, बंद हो गया हठात, बेचैनी हो गया उनको, विकल हो गए। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कोई व्यक्ति को बहुत बड़े धन मिला था, प्राप्त धन करोड़ों रुपया की कोई कीमत की वस्तु उनको प्राप्त हुआ था, तो बड़े सतर्क हो करके सावधानी से कहीं छिपा कर रखा था, हमेशा निगरानी कर रहा था, लेकिन वो खो गया, कैसे हो जाएगा दशा उसका, उससे कई गुना ज्यादा दशा हो गया, क्योंकि ये तो कोई साधारण धन है ही नहीं, ये धन तो उसका तुलना कुछ है ही नहीं, ये धन को पा करके और खो जाए, कौन धैर्य धारण करके रहेगा, विकल हो गए। इस प्रकार बेचैन होकर के आंख खोल दी, सब खुल गया, क्या हो गया, क्या हो गया, आंख जब खोले आप एक तक सामने देख रहे, ये क्या, जिसको अंदर अभी देख रहे थे अंतर्दृष्टि से, वो वही बाहर खड़ा है, वही रूप सामने साक्षात खड़ा है। अब बालक ध्रुव अब तो जब देखे उनको समझ गए, मैं तो उन्हीं को देख रहा था, गुरु जी ने उन्हीं का रूप मुझे वर्णन किए थे, वही साक्षात स्वरूप में भगवान आज खड़े हैं। आज विग्रह नहीं जिसको मिट्टी पानी दे करके बनाए थे, रंग दिए थे, माला पहना थे, वो नहीं, और साक्षात वैकुंठ पुरुष सामने खड़े हैं, और कुमार ध्रुव उनको आंख खोल करके सामने सामने एक फीट की दूरी पर मुझे देख रहे हैं। जब देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी नजर लगा रहे ध्रुव जी का रिएक्शन क्या हो रहा है, बालक ध्रुव देखते इतने गदगद चित्त हो गए, हृदय ऐसा उनका पिघल गया देख करके प्रभु को, इतने सुख अनुभव किए कि तुरंत दंडवत प्रणाम किए, पदम बोले, उनके चरण के पास में स्पर्श किए, चरण स्पर्शन किए। चरण स्पर्श करने से तो उनको जो कुछ था सारे निर्मूल हो गए, पवित्र हो गए। फिर उठे, फिर प्रणाम किए। अब तो गदगद हो रहे थे अंदर से, अब कंठाकृत होने लगा, आंख से आंसू बहने लगा, रोमांच होने लगा। अब बारंबार प्रणाम करके उठ करके हाथ जोड़ करके इसी भाव से हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते वो आंख से भगवान के रूप कमल को, रूप शोभा को पीना चाहते थे, पी जाते थे आंख से, और मुख से भगवान के चरण को चुंबन करके करना चाहते थे, और हाथ द्वारा बाहुभ्याम इसे भगवान को मैं गले लगाऊं, आलिंगन करके पूरे आत्मसात कर लूं, इसी मुद्रा में थे, इसी भाव में। उन्हें हर एक 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 इंद्रिया भगवान के सेवा करने के लिए तत्पर हो गया। प्रत्येक इंद्रिया, आंख कान नाक जो भी था सब कुछ, अरे सख्यात सभ्य प्रभु सामने खड़े हैं, सब तत्पर हो गए सेवा करने के। क्या करे, बालक है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, भगवान तो शास्त्र की समझते श्लोक बोलना उनको आता ही नहीं, पढ़े नहीं उनसे छोटे अवस्था से, तो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोलना आता ही नहीं। भगवान को स्तुति करना चाह रहे थे, कुछ गुण वर्णन करना चाहते, तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो समझ रहे हैं, कण कण विराजमान है। कुमार ध्रुव का इच्छा को समझ गए कि उन्होंने बहुत कृतार्थ हो रहा है मुझे दर्शन करके, स्पर्शन करके, और मेरा कुछ स्तुति वंदना करना चाहता है, लेकिन बेचारा असमर्थ है, संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं, भगवान को स्तुति करने के लिए चुने चुने सुंदर सुंदर शब्द चाहिए, अलंकार चाहिए, इसे वही कुछ आता नहीं उसको, इसलिए अपने आप को बड़े हीन समझ रहा है, मैं क्या करूं, ठाकुर जी सामने खड़े, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ आता नहीं मुझे, इस प्रकार कमी महसूस कर रहे थे बालक ध्रुव। तो भगवान ने अपने भक्त का मन कांक्षा पूर्ण करने के लिए आपने वेदमय शंख को उनके कपोल में स्पर्श कर दिए, स्पर्श कर दिए, जैसे आप ये लाइट के स्विच की ऑन कर दो तुरंत लाइट जल पड़े, पूरा आलोक ध्वजा आलोकित हो जाए सर, ठीक इसी प्रकार स्पर्श मात्रेण, स्पर्श करते ही उनको संपूर्ण भगवत ज्ञान होगा। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि इतने साल एडमिशन करेगा, पढ़ेगा, कोचिंग करेगा, फिर परीक्षा देगा, फिर कुछ जरूरत, कोई खाता कलम पेन कपी नथिंग, कुछ आवश्यकता भगवत कृपा, यही बस स्पर्श कर दिए, इमीडिएट एक सेकंड में ही हो गया ज्ञान उसको, सारे डिग्री एक सेकंड में। आप भगवान की जो वेदमय संकट स्पर्श पा करके उसी में भगवत कृपा चार्ज हो गया उनके ऊपर, उस भगवत कृपा को प्राप्त करके अब भगवान की स्तुति करने लगे। 5 साल के बालक जो स्कूल में गए नहीं अभी तक, अब ऐसे चुने हुए श्लोक से स्तुति करने लगे। बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि ये तो वेदार्थ, वेद के सारार्थ, भगवान पुरुषोत्तम योग में गीता में कहते हैं वेदेश सर्वे हमेव वेद्यो, कि समस्त वैदिक वाङ्मय के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, वेद मेरे बारे में बताते हैं, अहम एव वेद्य हो, मैं ही केवल वेद्य हूं समस्त वेद के द्वारा, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य हो, वेदांत कृत, वेद बनाया कौन, वही तो बना वेदांत कृत, मेरे द्वारा से वेदांत बना गया, वेदांत कृत वेदवित, वेद को सचमुच जानने वाला भी कौन है, वेदवित में ही नहीं, वेदांत कृत वेदवित भी मैं ही। तो इसी प्रकार वेद के द्वारा जो वेद्य वस्तु, जो ज्ञान वेद के जो सारार्थ आज वही वेदवित साक्षात वेदकृत साक्षात भगवान के द्वारा भगवत ज्ञान को प्राप्त करके वेदार्थ को प्राप्त करके उसी को बखानते बोलते हैं। बोलना शुरू किए, भगवान खड़े होकर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके सामने छोटे बालक ध्रुव हाथ जोड़ करके उनको स्तुति कर रहा है। उन्हीं के शक्ति से सबसे पहले स्तुति किए, भगवान की कृपा को प्राप्त होने के बाद में, और ऐसे नहीं रह जाता। आचार्य लोग कहते हैं कि पहले से नारद जी की कृपा प्राप्त किया, घर से जब आया था निकला था माँ की कृपा लेकर के आया, आते ही रास्ता पर महामुनि देवर्षि नारद उनकी कृपा की सर में हाथ रखे और उनको पढ़ाई लिखाई एक बार ऐसे सिखाए, ऐसे ट्रेंड अप किए कि पक्का वो भेज दिए हरि क्षेत्र श्री धाम वृंदावन। वहां जाकर के जमुना के सलिल में स्नान किए, गंगा जमुना स्नान करने से हमारा विश्वास है कि निष्कलुष हो जाता है, पाप धुल जाता है। उनका ऐसे पाप तो कुछ था ही नहीं, पहले से धुला हुआ थे, धुला हुआ था, तो वो भी फिर वो भी जमुना जल से स्नान करके और जो नीति नियम व्रत में रहे भगवत विग्रह को अर्चना शुरू किए, और बाकी क्या रह जाएगा, कुछ तो था नहीं, पूर्ण पवित्र हो चुके थे, लेकिन इस शरीर में इस काया में कुछ था सत्य हो गया था, लेकिन अनंत कोटि जन्मों के जो फल कर्म फल जो था आज इस भगवत दर्शन से ही सब निर्मूल हो चुका, कुछ बाकी नहीं रहा। और जब भगवान के स्पर्श किए, भगवान के सामने खड़े होकर रोए, सब धो धा कर साफ हो चुका था, और इस पवित्र पात्र एक पात्र में भगवान ने स्पर्श करा दिए, आपने ज्ञानामृत डाल दिया, अपूर्ण हृदय में भगवत ज्ञान भरपूर लबालब भर चुका, उस भगवत ज्ञान में परिपूर्ण होकर के पूर्ण होकर के अनुभव करके, और वो जो आज वाणी बोल रहे हैं ये कोई छोटे बालक की वाणी नहीं है, वो साक्षात भगवान बोल रहे हैं, उनके मुख से वो बोल रहे हैं। वो क्या बोलेगा, हम किस द्वारा वही चार्ज करके बुला रहे हैं, करंट तो वहीं से आया, वही बोल रहा है, वही वेदवाणी बोल रहा है। सबसे पहले ध्रुव जी हाथ जोड़ करके अपनी स्तुति से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अभी तक मेरा इंद्रिय सुप्त था, सोया हुआ था, अब आपके दर्शन और स्पर्शन से वो जग गए। कैसे जग गए, मतलब अभी तक वो बाहरी सुख लेना चाह रहा था, बाहरी सुख की खोज में था, पता नहीं था इंद्रिय का होने का, इंद्रिय सृष्टि का लक्ष्य क्या, क्यों इंद्रिय बने, किस कार्य के लिए बने, ये पता नहीं था, हम किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, हम लोग सब सोए हुए हैं, हमको लगता है कि उठ करके हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन ये काम किस लिए करते हैं पता नहीं, हमारे लक्ष्य हमको पता नहीं, क्या एम है, क्या लक्ष्य है हमारा, किस लिए जीते हैं, किस लिए खाते हैं, किस लिए सोते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं किसी लिए। तो जो जिसको पता है वो अगर आकर नहीं बताए, जो जागृत है वो अगर नहीं जगाए तो हम जगेंगे कैसे, हम तो यही सुखने में सुखने पड़े, जागृत स्थिति क्या हमको पता ही नहीं। तो इसलिए साक्षात श्रीमन महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर के सारे जगत को जगाते हैं, जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रखो ले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रखो ले। महाप्रभु आकर जगाते हैं, हे जीव जागो जागो, जागेंगे तो जो सो रहे हैं, आप तो सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, मैं तो बैठा हूं, नहीं, सो रहा है, कहां बेड? बेड नहीं, उनके गोद में सो रहे हो आराम से। किसका गोद में? पिशाची, पिशाची दाई नहा, कौन है ना माया, माया रूपी पिशाच के गोद में आराम से लेट के सो रहे। तुझे पता नहीं, तू सोच रहा है कि मैं कुछ हूं, इसलिए जागो। तुझे पता नहीं तू किस लिए आया था? भजी बबोलिया से संसार भीतर खोदा है कि कौन लोग भेजा, किसी को हम पता नहीं। बोलते तुझे भेजा गया था यहाँ भजन करने के लिए। भजी व बोलिया ऐसी ही संसार भी तो, इस संसार में भजन करने के लिए भगवान गीता में बात कहें, नवा अध्याय में अर्जुन को बताए कि अर्जुन अनित्यम असुखम लोकम, ये जो लोक है ज्यादा टिकने वाला धैर्य तो कितने दिन करता है, वो जाएगा थोड़ी, मिट जाएगा सारे अनित्यम लोग को, लेकिन मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं सुख नहीं मिलेगा, असुखम, यहाँ सुख का व्यवस्था ही नहीं। अनित्यम लोकम असुखम लोकम इमं प्राप्य, तो अर्जुन पूछेगा ठाकुर जी तो ये मैं किस लिए इधर आया, मैं क्यों इधर आया, ये अनित्य लोक में असुख लोक में मैं तो हमेशा जीना चाहता हूँ और सुख में जीना चाहता हूँ, सुखी रहना चाहता हूँ, हमें दो ही इच्छा है। प्रत्येक प्राणी का दो ही इच्छा है, सुखी होना चाहता है और जीना चाहता है। कोई मरना चाहते हैं? नहीं। और कोई दुखी होना चाहते हैं? नहीं। कोई दोनों नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, सुखी होकर जीना चाहते हैं। बोले दो ही चीज इधर नहीं मिलेगा, यही दो इधर नहीं मिलते, क्योंकि दुखालय में दुख की व्यवस्था इधर है, मृत्यु लोग है, मरना के काम है, तो मरना ही होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। तू ये रॉन्ग एड्रेस में आया क्यों, है ना, तो जाना और था कहीं, ये रॉन्ग एड्रेस में आ गया। तो अर्जुन पूछा साहब ये अनित्य लोग में असुख लोग में आएगा, पर अब क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। इमं प्राप्य, भगवान बोले अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमं, एक ही काम है केवल मेरे भजन करो, फिर तेरा सही रास्ता पकड़ लेना चाहता है। यही तेरा लक्ष्य है जीवन का, जो भगवान अपने मुख से भगवत गीता में कहे थे, आज श्रीमन महाप्रभु यही बात कहते हैं, भजी व बोलिया इसी संसार भीतरे भूलिया, तो भूल गया, कैसे भूल गया, अविद्या अज्ञान अविद्या भूल गया, तुम पता नहीं। लेकिन अब क्या करूं, कैसे जगूंगा, अब तो माया ऐसे फंसा कर रखा है, कोई उपाय नहीं, कैसे निकलूं। तो महाप्रभु ने डरो मत, मैं आया ना, ए नीची औषधि माया नासी बार लागी, ए नीची औषधि माया शिवार लागे, हरि नाम मंत्र लय तुमि मागे, हरि नाम मंत्र लय तुमि मागे। दवाई लेकर आया ना, तेरा नहीं छुड़ा दूंगा, माया छूट जाएगा, दवाई लो। कौन सा दवाई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र, ये दवाई लाया हूँ, उसको मेरे से मांग लो, उसको लेकर के अनुपान के साथ उसको पान करो, पाओ दवाई। ये माया की महौषधि है, महान औषधि है, छूट जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। तो आज वही बात, कुमार ध्रुव भगवान की कृपा से भगवान के ज्ञान को पूर्णता प्राप्त करके उनकी कृपा से सिद्ध होकर के उन्हीं के बल पर उनके सामने आज बोल रहे हैं, हे प्रभु आज मेरा इंद्रिया जागृत हो गया। क्योंकि जिस इंद्रिय के द्वारा भगवत उन्मुख होकर सेवा किया जाता है तो ही इंद्रिय जागृत माना जाएगा। हम जो अन्य अन्य प्रकार के दार्शनिक लोग बोलते हैं मुक्ति मुक्ति मुख्य ही सबसे बड़ा धर्म अर्थ काम कई सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ, धर्म हुआ अर्थ हुआ काम हुआ, अब मुख्य चाहिए, मुख्य ही चरम पुरुषार्थ है। हमारे वैष्णव आचार्य गण कहते हैं ये सबसे चिटिंग है मुख्य वंशा, मुख्य वंशा तारा मध्य कैतव प्रधान, कैतव मतलब चिटिंग, सबसे चिटिंग सबसे ठगता ही मुक्ति वंशा, कभी आपको उधार नहीं कर पाएगा। इसलिए मुक्ति मुक्ति कामी मत बहुत अशांत है, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कहते मुक्ति तो हमारे आचार्य गण कहते मुक्ति है क्या, वो मुक्ति का परिभाषा देते हैं, मुक्ति ही अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। वास्तविक मुक्ति व मुख्य इसको कहा जाता है जब आप अपने आपके स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तब इस स्थिति को मुक्ति कहा जाएगा। हम सोचते हैं अपने बुद्धि के अनुसार, अगर मैं इधर बैठा हूं, मेरे हाथ जैसे बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, कमर में बांध दिया, रस्से बांध दिया, तो आप लोग क्या बोलेंगे, बेचारे बंधे हुए हैं, है ना नहीं? हाँ हाँ, तीन चार जगह कसकर के बांध के बंधे हुए, बंधन में है, सब बोलेंगे ना बंधन में, मैं बैठा हूँ वो सारे चेयर सब बंधे हुए तो बोले बंधन में। तो आप बड़े दया करके आएंगे, आ करके वो अस्त्र लाकर काट देंगे, सब काट कूट फेंक देंगे, अब आप क्या बोलेंगे, अब तो मुक्त हो गए, काट के रस्सी खोल दी, काट के रस्सी फेंक दी, मुक्त हो गए। लेकिन अभी मैं नीचे बैठा हूं। तो हमारे आचार्य गण कहते हैं कि पहले ही बंधा था तो इसे बैठा था, बैठा हुआ था बंधे था, अभी काट कूट के बंधन मुक्त करते तभी बैठा हुआ है, तो मैं कैसे मानू कि मुक्त हो गया, करते क्या प्रूफ है मेरे पास कि मुक्त है ना, मैं खोल दिया ना, तो खोल दिया मुर्ख तुझे दिखाई नहीं तो फिर भी बंधा हुआ, अगर खुला होता तो उसका प्रमाण है, उठकर चलता बैठता कुछ करता, है ना, जो बंधे हुए जो आदमी है तो बैठा रहेगा, कर नहीं पाएगा ना कुछ काम, कर नहीं पाएगा, उठ करके चीज नहीं ले पाएगा, इधर चल के जा नहीं पाएगा, क्योंकि बंधे हुए। खोल देने के बाद भी ऐसा कुछ कर नहीं पाता, ऐसे बैठा हुआ है तो उसे कैसे मानो कि उसे खुला खुला है करके, क्यों खुला हुआ का प्रमाण है कि आना जाना करे, उठे बैठे, तब तो मानेंगे क्या, बंधन नहीं है, जो फिर भी इसे बैठा है तो कैसे मान। तो इसी को कहते हैं जो जिस अवस्था में तू था मुक्ति होने के बाद तू इसी अवस्था में है तो कैसे मुक्ति हुआ, कैसे मान। बोलते ना जिस अवस्था में तू था मुक्ति होने के बाद जब उसका विपरीत अवस्था को प्राप्त किया तब मैं मानूंगा कि तू मुक्त हो गया। विपरीत अवस्था क्या है, मुक्त अवस्था क्या है ना, आप अभी हम लोग स्वर्ग विभ्रम है, हम जानते नहीं कि हम है क्या चीज, हमारा स्वरूप ज्ञान हमारा है ही नहीं। तो बोलते जब अपना स्वरूप ज्ञान हो जाए और उसमें स्थित होकर जो कार्य हम करने लगे तब माना जाएगा आप तो खुले, अभी अपने स्थिति में है जिसे होना चाहिए इसे अब बना नहीं। तो स्वरूप क्या है, कहते जीवीर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। सभी जीव का जो असली पहचान है कि भगवान के सेवक है, भगवान के सेवक है। जब तक जीव भगवान की सेवा में संलग्न नहीं हुआ तो उसको मुक्त करके माने कैसे, है ना। आप भी बोलते मुक्त हो गए, क्या कर रहे, नाक कान पकड़ कर ऐसे बैठा जा सकता ऐसे करने के लिए, मुक्त होने के बाद तो भगवान की आरती करो, भगवान की प्रसाद बनाओ, भगवान की श्रृंगार करो, उनके मंदिर में आराधना करो, इसे भगवत सेवा में लग जाना चाहिए। वो नहीं किया, बैठ करके बैठा तो कैसे मुक्त हो, अब तो अभी बंद है वो, अभी जकड़ कर और बंद गए, थोड़ा बहुत ढील ढूल कर रहा था बंद गए बिल्कुल। बोले ये मुक्ति नहीं है, वास्तविक मुक्ति सिद्धि है जो भगवत सेवा में संलग्न हो जाए। तो इसी को कुमार ध्रुव आज भगवत ज्ञान को प्राप्त करके कहते हैं कि प्रभु आज आपके कृपा से मेरा समस्त इंद्रिय तत्परता से आपके सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी जागृत हो गए। अभी तक जो आपने सुख के लिए आपने शरीर के लिए काम करे थे मरे पड़े थे, लेकिन आप सब कुछ छोड़ करके केवल आपको सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तो अभी उठे उन्हें जगे, अभी जागृत हो गए, उनको पता चलता क्या करना चाहिए। इसलिए मेरे मुख से आपकी स्तुति वाणी निकल रहा है, मैं आंख से आपको देख रहा हूं, ये कर रहा हूं। इस स्तुति से भगवान की स्तुति किए, उनके कृतार्थ थैंक यू करने के लिए कृतार्थ हो रहे कि आपकी कृपा कर मैं एहसान मानता हूं, आप कृपा करके मुझे आज जगा दिए, इसी स्थिति में भी जगा दिए। फिर इसके बाद में सोचते हैं कि जब आपको ज्ञान हो गया ना मैं कौन हूं, तब बहुत उनको पश्चाताप होता है, बोलता है कि प्रभु आपने स्वयं कहते हैं कि चतुर्विधा भजते इमाम जना सुकृति अर्जुन, चार प्रकार लोग आपके शरण में आते हैं, उनमें तो सबसे थर्ड क्लास में ही चौथा ग्रेड है, क्योंकि मैं आशा करके आया था मेरे बाप दादा परदादा से भी ज्यादा बड़ा पोस्ट चाहिए मुझे, अर्थ कामी पोस्ट पोजिशन चाहिए था, बोले अर्थार्थी भक्त हुआ, ज्ञानी नहीं जिज्ञास नहीं इसे भक्त नहीं, बोलते मैं तो अर्थार्थी हूं, इसी बड़े आशा करके अर्थ आशा करके आया था। उस श्लोक में कहते हैं, हमने बोलते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं जिनके बुद्धि माया द्वारा ठग लिया गया हर लिया गया है, उन लोग ने विषय सुख मांगते हैं आपसे, अरे ये विषय सुख तो नरक में भी उपलब्ध होता है, सुख और कुकर जो में मिलता है स्पर्श सुख, सच सच में विचार करके देखा जाए आजकल हमारा बुद्धि में जिसको हम अति सुख मानते हैं स्पर्श सुख को, इसके लिए अगर हमको कहा जाए सुख भोगने के लिए तो बहुत डरते हैं हम लोग, भोगे रोग भयं रोग ना हो जाए, भोग करने जाते ही पहले विचार रोग ना हो जाए, कितने डर। तो निडर होकर भोगते तो सुकर कुकर कोई चिंता नहीं, एक साथ में एक डचन पैदा बच्चा पैदा हो जाए, किनके लिए कपड़ा लत्ता खरीदना चिंता है, न स्कूल में एडमिशन करने का चिंता है, न कोई चिंता है कहां रहेंगे फ्लैट का व्यवस्था नहीं, कितने बढ़िया। तो हमसे तो कई गुना ज्यादा सुख भोग रहे हैं, अगर इसी को सुख मानते हैं स्वस्थ सुख और सुख माना जाए तो हमसे तो कई कई गुने ज्यादा सुखी हो। तो ये तो बड़े मूर्ख ठगे लोग इस प्रकार सुख वासना करते हैं, हमसे मांगते हैं। और मैं भी सबसे गए बीते फोर्थ क्लास के वही सुख कामना करके पोस्ट पोजीशन मांगने के लिए आशा करके आया था, बस अभी मुझे लगता है कि मैं कितने फोर्थ ग्रेड का हूं, ठग गया मैंने बुरी तरह से। हरिभक्ति सुद्धदेव ने तो यहां तक कहा, गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तो कांच की टूटे हुए टुकड़े ढूंढने के लिए आया था, ये ब्रह्म पद से भी बड़ा पद को बोलते हैं ये टूटे हुए कांच का टुकड़ा, इसके समान में उसके लिए आया था, अब मेरे सामने इतने बड़े हीरा खंड प्राप्त हुआ डायमंड, तो मुझे और कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए, हीरा छोड़कर कोई शीशा का टुकड़ा लेगा। तो बोलते मैं जो ब्रह्म पद से बड़ा पद मांगा था वो जो टूटे हुए शीशे का टुकड़ा था, अभी आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बेटा तू अभी समझ में आ गया, बोले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब दुनिया क्या बोलेगा, तुम तो समझ कर चले, दुनिया के हजार लोगों को बोलेंगे देखो छोटा बच्चा है फसादी से बहला दिए उसको, बेचारा घर से रो करे कितने मान अभिमान कर कितने प्रयास करके बड़े एक पर में खड़े होकर खूब ang naging bagong nang pasanin ito. Irekate ko din. Tumirawat nga mo ka. Jalo ko yun na. Gulo niya, unka pa sa angyo ito. Dito niya, isipay lang ito. Hindi na. Pero naman ito dunga. Tumira pa sa angyo, itchala ka rata mo dunga. Dumahas mo na ka, ito nahi chahiye mo dito. Ito nahi, tere rin nahi chahiye mo ito dunga. Hindi yun unko. Drup pa diya. To is pa kahe ki, main sabse chothe grade ka hoon. ऐसे पतित हूं, मेरे बुद्धि इस प्रकार था, अभी मुझे समझ में आ रहा है, मेरे इंद्रिय जो ज्ञान जो जगा, अब मेरी समझ में आया, मुझे लगता है कि मैं क्या था, मैं क्या करना था, क्या उचित था, मैं क्या करना, अभी समझ में आ रहा है, भगवान को अभी समझ में आया तो सही समझ गया ना, अब तो बिल्कुल समझ, तो अभी क्या चाहते हो बोलो, अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरे लिए ही आया हूं, वैकुंठ छोड़ करके वैकुंठ त्याग करके सीधा यहां तक आया लर्निंग करके कई हजारों करोड़ मील दूर से आपके लिए आया केवल खास आपके लिए आप मुझे नहीं आप तो नहीं खड़े थे और आपके लिए आपके सामने अब क्या चाहता हूं मैं तुझे सब कुछ करने के लिए तेरे लिए तैयार हूं बोलो बेटा बोलो मेरे सामने तो इस प्रकार कह करके पूरे भगवत ज्ञान से उत्पुत होकर के कुमार ध्रुव भी बता रहे हैं कि बड़े प्रसिद्ध श्लोक उनके ध्रुव की जो स्तुति किए हैं भागवत के 12 श्लोक में किए थे तो उसमें जो 2-3 श्लोक बड़े प्रसिद्ध हैं उनके असली मांग जिसमें है जो वो चाहते हैं ये जो चाह कुमार ध्रुव ने कहे ये संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार निचोड़ है क्योंकि उन्होंने अभी अभी भगवान से वेदमय संख्य के द्वारा चार्ज हो करके उसी में अनुभव गम्य हो करके फिर बोल रहे हैं मांग कर रहे हैं क्या मांगना चाहिए हम लोग का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं कोई ज्ञान नहीं महामूर्ख है जो लोग बहुत बड़े बड़े साधन साध्य करके कुछ किए पढ़े तभी वो नहीं ये तो साक्षात भगवान के द्वारा इमिडिएट पढ़ी पढ़ा है पूर्ण कृपा प्राप्त होकर के ज्ञान प्राप्त होकर के अनुभव प्राप्त होकर के अब ध्रुव जी बोल रहे हैं वेदार्थ सारम आचार्य कहते हैं वेद का वास्तविक अर्थ कोई बड़े बड़े वेदवादी उसको चैलेंज नहीं कर सकते कहने क्योंकि वेद को बिल्कुल प्राप्त करके भगवत कृपा से सिद्ध होकर के बोल रहे हैं ध्रुव महाराज कृपा प्राप्त करने के बाद भगवान के दर्श और परस खाने के बाद इतने तप करके सारे को पवित्र करने के बाद जो उनके अनुभव जो अभिज्ञता इससे वो मांग रहे हैं बोलते हैं प्रभु मुझे तो भक्ति मुहु प्रवाहताम प्रभु मुझे केवल आपके भक्तों की संग चाहिए कैसे भक्त की संग ना उन भक्तों की संग मुझे चाहिए जिन भक्तों ने आपके सेवा के लिए निरंतर लगे हुए हैं और आपके गुणगान हमेशा करते रहते जो भक्त लोग निरंतर आपके नाम लीला गुण के निरंतर श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं इस अमृत को पान कर रहे हैं उन भक्तों का संग मुझे चाहिए बास ना स्वमहिमन्नी आपके महिमा मुझे नहीं चाहिए आप भी मुझे नहीं चाहिए ना नकार दी भगवान सामने खड़े हैं बोलना थैंक यू आप नहीं चाहिए भगवान मारो बोल देखो मैं वैकुंठ छोड़कर यहां तक आया ये मुझे बोलते हैं आप मुझे नहीं चाहिए लगे नहीं आप उनको कृपा करने के लिए कई हजार कितने दूर से आए आकर बेटा मांग करके सब उनको शक्ति दिए सब कुछ समझ दिए बेटा क्या चाहिए बोलते मुझे आपको नहीं चाहिए चाहिए क्या ना आपके भगत चाहिए आपके भक्तों चाहिए भक्तों का संग मुझे चाहिए आपका संग नहीं चाहिए आप नहीं चाहिए मैं तो हूं तो नहीं आपसे नहीं कहना आप नहीं चाहिए बोले क्यों मेरे भक्त तुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए नहीं
कृष्ण भक्त थोड़ा आगे सर के
बोले क्यों तब कहते हैं कि जो असली रस है जो अमृत है ना वो अमृत आप नहीं देंगे तो अमृत तो वो देंगे ये कौन सा अमृत भाई मैं नहीं दे पाऊंगा मेरे से कौन सा कमी है क्या बताओ, अभी स्वर्ग से लुटा लो पूरा मंगा दूंगा होलसेल अमृत कलश उठा के दे दूंगा, मैं ही महीने रुपये अमृत दिया था। बोले नहीं नहीं ये अमृत तो थर्ड क्लास है, जो असली अमृत है वो अमृत आप थोड़ी देंगे। वो देव अमृत कौन है? कथा सुधा, कथा अमृत। ये अमृत आपने क्योंकि आपके बारे में ही कथा है ना, वही अमृत है। और आप अपने पढ़ाई को अपने मुख से कभी करेंगे नहीं, आपके गुणगान आप स्वयं करेंगे नहीं, तो इसलिए आपको लेकर मुक्त कर चुकेगा क्या आपका मतलब? आप जाइए, मुझे आपके भक्त दीजिए जो आपके निरंतर दशगान करते हैं, क्योंकि आपके दशगान आप खुद नहीं करते हैं, आपके जस तो आपके भक्त लोग दान करते हैं। और वो जस जो अमृत है ये शक्तिशाली है, मुझे वो चाहिए जो आपके गुण वर्णन आपके लीला कथा गुण का कंटिन्यूस कीर्तन जो करे मैं इसको सुनता रहूं। बोले तुझे मुक्ति पद ये सब सिद्धि सुनता नहीं, सब लेके क्या करूं? बोले तो संसार अभी तो जन्म हुए राजपुत्र होकर के संसार में रहेगा ना, संसार में वो क्या खातिर नहीं करता हूं। अरे संसार के सगे संबंधी ये सब है सब कुछ नहीं खातिर करता, जन्म मृत्यु सुख दो हो क्या। बोले कैसे? बोले क्योंकि आपके कथा मृदा जो आपके कथा मृत सुन करके मग्न चित्त मैं बिल्कुल पागल ऐसा होकर के आप कथा सुनता रहूंगा, इतने मग्न हो जाऊंगा, इतने लगन से आपकी कथा सुनूंगा कि भूल जाऊंगा कथा सुधा पी करके बिल्कुल पागल जैसे रहूंगा, मत हो जाऊंगा। जो पागल होते हैं उनको घर वाले कुछ बोलते हैं, अरे पागल छोड़ दो, घर वाले कुछ संसार वाले होते पागल है छोड़ दो, तो कोई प्रभाव नहीं पड़े पागल है। बोले इस प्रकार में पागल होता दुनिया से क्या होता, कोई सब छोड़ दे दुनिया का माया मुझे भी छूट जाए, क्योंकि पागल है ना, ऐसे पागल नहीं कि मुझे प्राणी सुन तो आपके कथा में तो सुन करके पागल हो, तो इसलिए पागल जैसे दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, कोई सर्दी हो गर्मी हो ये हो किसी प्रकार के उनको प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए कथा मृत पान करके मत पागल जैसा हो जाऊंगा तो दुनिया से कोई फर्क नहीं। बोलेंगे लेकिन दुनिया के प्रभाव से सुख दुख हानि लाभ मान अपमान से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पागल जैसा होकर रहेगा, लेकिन मरेगा तो मर जाएगा ना। हंसने लगे, अरे प्रभु आपके कथा क्या जानते हैं, अमृत ही अमृत, अमृत पीने से मरूंगा किसे, मरने के भय से तो अमृत पीते देवता, ये थर्ड क्लास अमृत पीते मैं तो, ये अमृत पीऊंगा फिर मरूंगा किसे, मृत्यु भाग जाएगा इसे, कथा अमृत पीऊंगा तो मरना नहीं होगा, और पागल होकर मत होकर रहूंगा तो दुनिया के जो प्रभाव ये नहीं पड़ेगा, डम किया मैं रहूंगा, फिर क्या चिंता, फिर क्या चिंता, फिर चिंता नहीं। इतने जो आपके माया बंधन है इस बोले कुछ भी माया का प्रभाव नहीं रहेगा जब आपके कथा को सुधा को पागल होकर मुक्ति करूंगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं। बोले तेरे शरीर की बुढ़ा हो जाएगा, शरीर की जराग्रस्त होगा, कुछ होगा भूख का शरीर, बोले शरीर को शरीर की ध्यान ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके कथा के एक प्रभाव है शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाता है, मैं शरीर हूं ये ज्ञान ही नहीं रहता, इस प्रकार के मत हो जाऊंगा फिर शरीर से क्या होगा मुझे क्या पता। अभी तो आप कथा सुने नहीं था, 6 महीना तक करके दिखा दिया, अब कथा सुधा प्राप्त करो, अब शरीर को चिंता कुछ नहीं ना, शारीरिक क्रियाओं का कुछ भूख प्यास का मुझे प्रभाव पड़ेगा ना, बाहर की सामाजिक को प्रभाव पड़ेगा ना, मृत्यु के भय रहेगा, बिल्कुल निडर होकर रहूंगा, तो मुझे केवल कृपा करके प्रभु आपके ऐसे भक्तों के संग दीजिए जो भक्त निरंतर आपके सेवा में संलग्न है, आपके शरण श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, मैं केवल उनसे सुनता रहूं, बस आपके निर्मल जस सुनता रहूं, इसी से आपके ये मुख्य पद मुक्ति सब तुच्छ है, कुछ नहीं उसके सामने ना, संसार कुछ बाधित नहीं कर सकता, परम सुख से रहूंगा, बस यही वेद वेदार्थ के निचोड़ है, इस अध्रुव महाराज ने मांग कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, बोलते भगवान आप नहीं, आपको भक्त संग चाहिए, भक्त संग की कामना करने लालसा करते हैं, मुझे अपने भक्त के संग दीजिए, इससे मैं कथा सुना और इसी से ही मेरा उद्धार है। बस उद्धार क्या, यही रह करके उद्धार हो जाए, कोई जाना ना जरूरत नहीं, यही रह करके मैं सब कुछ जीत लूंगा, सब प्रकार से दिल जीत लूंगा, केवल कथा प्रभाव से। इसी को गोपिकाएं लोग जब भगवान ने रासलीला में चले गए थे, वो बोलते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम, बोलते तब कथामृतम, आपके कथारूपी जो अमृत है तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन को शांति देता है, हर प्रकार से जो टेंशन है, जो ताप है, त्रिताप है, सब जगदीवु त्रिताप समित हो जाता है, शांत हो जाता है। बड़े बड़े कवि उस गान करते हैं, क्योंकि कल्मषाप हम सारे कल्मष को अपहरण करने वाले हैं, ये आपकी कथा की शक्ति है, प्रभाव है। लेकिन अलग अलग आचार्य अलग प्रकार भाव से कहते हैं, बोलते हैं गोपिकाएं कहते हैं कि प्रभु तब कथा मृतम, बोले अमृत नहीं मरा हुआ, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, बोले जीवन को तड़पता है, आपके कथा जो सुन गया तो मरा हो तड़प ही रहेगा, और घर में नहीं रहेगा, कहीं काम के नहीं रहेगा, तो बाबा जी बनेगा ही, तड़पता रहेगा जीवन। ऐसे बना देता है, पागल को देता है, ये सबको मार देता है, क्या मार देता है, संसार वासना मर जाता है, नहीं चाहिए, मर जाता है सब आशा, सब मर जाता है। तो इसी प्रकार के भगवान कथा कि ये प्रभाव है, तो इसलिए कथा सुधा को पान करने के लिए जो आवश्यक वस्तु है भगवत भक्त संगत, वही मांग करते हैं कुमार ध्रुव। आज बहुत ज्ञान से सिक्त होकर के भगवत कृपा को पूर्ण रूपण प्राप्त होने के बाद जो सर्वश्रेष्ठ मांग जो करते हैं उनके लिए जो आवश्यकता है, बोलते अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु कृपा करके आपके निज जन, आपके जो सच्चे भक्त हैं उनके संग मुझे प्रदान कीजिए, भक्त संग से ही मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, तो कुछ भी मेरा दुख सुख भय मोह कुछ नहीं रहेगा, शोक दुख भय अपमान, सुख जो भी शोक है, जो दुख है, जो भय है, जो मोह है, सब कुछ अपहरित हो जाएगा अगर सही भक्त के संग प्राप्त हो जाए। इसलिए कृपा करके भक्त के संग में प्रदान, ये ध्रुव महाराज भगवान के सामने बोलते हैं, भगवान आप नहीं, आपके भक्त। अब भगवान पूछे तो क्यों ना, क्योंकि आप अपने जस गान नहीं करते, मैं तो आपके जस ही सुनना चाहता हूँ, आपके जस तो आपके भक्तों की गाएंगे, आपके बारे में वो बोलेंगे, आप थोड़ी बोलेंगे, आप हमारे बारे में बोलेंगे, आपके बारे में हम सुनना है। तो इसलिए भगवान के बारे में जो बात करते हैं, उनके श्रवण, उनके संग करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ चरम परम प्राप्ति, वही जो ध्रुव महाराज ने अपने प्रार्थना में उन्हें व्यक्त किए भगवान के सामने। बाद में कुमार ध्रुव इस प्रकार द्वादश श्लोक में 12 श्लोक बोले कि द्वादश अक्षर मंत्र साधना के तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसमें 12 श्लोक वेद के निचोड़ भगवान के सामने स्तुति किए, भगवान पूर्ण प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए, बोले ध्रुव तुम जो चाहते हो वो तो होगा ही, लेकिन मेरी ओर से मैं भी तुझे देता हूँ, उनको दिए, बस इतने हजार साल 36,000 साल तक तो राज करेंगे वो, निष्कंटक राज्य, भगवान में भक्ति, निश्चलमति, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ दे दी भगवत कृपा जिसको हो जाए, 5 साल की उम्र तो सब कुछ हो गया, क्या उससे बड़ा डिग्री क्या चाहिए। सब देख करके भगवान ने उनको अंत में बोल दी, मेरा पास भी गारंटी, डरो मत, मेरा पास आओगे मैं गाड़ी भेजूंगा, गाड़ी भेज कर उठाऊंगा तुझे, टाइम पर मैं गाड़ी भेज कर ले जाऊंगा। तो ले ही दिए भगवान, तो उनको भेज देते हैं। कुमार ध्रुव घर वापस आते हैं, पहले नारद जी जब से बोल दिए थे आकर के राजभवन में उनके पिता श्री उत्तानपाद को, उत्तानपाद उनके छोटे स्त्री के बस में होकर के जो उनके प्रति जो दुर्व्यवहार किए, जिसके कारण से रुष्ट होकर के कुमार ध्रुव घर त्याग करके चले जाते हैं राजभवन छोड़ करके। उसके बाद में उनको ज्ञान होता है, अरे में क्या किया, ध्रुव ढूंढने लगे, बोले तो गया, अरे बड़े दुखी हो गए, अब उनका ज्ञान हुआ मैं तो स्त्री के गुलाम हो चुका हूं। अब फिर उनसे मोहित नहीं हुए, उनसे अलग होने लगे, चिंता में पड़े, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, जंगल में कोई शेर ना खा लिया हो, कुछ किया होगा ऐसे। तो नारद जी आकर के उनको दुख अनुमोदन किए, बोले राजा तो चिंता मत करो, आपके बेटा आपके उनको संरक्षण प्रदान करेंगे, तो भगवत संरक्षण में है, वो बड़ी जल्दी आ जाएगा, इतने काम करके आएगा कि आपको भी सुने नहीं। सचमुच 6 महीना के अंदर, केवल 6 महीना के अंदर भगवान को वैकुंठ से ला के सामने खड़ा कर दिए और उनसे दर्शन प्रसन्न बातचीत पर प्राप्ति करके वापस आ गए 7वां महीने में घर वापस। इतनी जल्दी इतने बड़े डिग्री कौन प्राप्त करता है, साधारण इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस करके 6-7-8 साल जाता है, वो भी बेकार, थर्ड क्लास चल जाएगा हो जाएंगे खत्म। कोई बोल सकता है इतने पढ़ाई को इतने परिश्रम करते करते डिग्री अचीव किया और शरीर छूट गया, फिर दोबारा कोई शरीर मिलेगा बोले कि हम डॉक्टर नहीं खत्म, फिर एबीसी की पढ़ो फिर। लेकिन ये है अविनाशी, केवल 6 महीना से प्राप्ति करके जो वापस आए, पूरे साम्राज्य के लोग, राज परिवार के लोग, आज तो नहीं बज रहा था क्योंकि आकाश से पुष्प वृष्टि हो रहा था, देवता लोग भी बधाई देते थे, सब आए, सबके प्राण रखे हो मर जाते सब, तो ध्रुव अकेले सबका बेहाल करके रखे थे, सब श्वास रुद्ध कर दिए थे सबका, उनके कारण सब प्राण वापस आए, जिए सब, इसलिए सब बधाई देते थे। कुमार ध्रुव जो वापस आए, सबसे ज्यादा तो खुशी होगी कौन, सुनीति, हाँ माँ सुनीति ने तो दुर्गा का देखा, जिन्होंने पहले गुरु जी तो हुई है ना, पहले शिक्षा हुई दी थी, उसका काम बना कर कहा कि इतने खुश हुए होंगे उन्होंने, और उनके साथ साथ दुखी कौन हुए होंगे उसका दुख तो पहले से शुरू हुआ था, राजा उनसे बात नहीं कर रहा था, वो पुत्र शोक में बैठा था, सब मंत्री को बोला रात चलाओ, घर घर छोड़कर बैठा था बेटा हमारे, पुत्र शोक में बैठा था। जब आज ध्रुव आ रहा है, बाहर तक आकर के उनको स्वागत किए, बड़े भारी स्वागत संवर्धना के साथ ध्रुव जी को राजभवन में वेलकम किया जाता है। तो पिताजी कुछ दिन ध्रुव के साथ बहुत उनको प्रसन्न करते हैं, करके अवस्था होता है, ध्रुव को राज्य पाठ सब दे करके गौतम को नहीं दिए, वो बेटा उस रानी से तो बात ही नहीं किए, उनको दे करके महाराज चले जाते हैं। तो उसके बाद ध्रुव महाराज राज्य करते हैं, लेकिन अब उन दोनों का दशा क्या होता है, उनके जो भाई था उत्तम, जिसके कारण में उनका जैसे दशा हुआ, और जो सुरुचि, उत्तम बड़े हो चुके थे, बड़े होने के बाद कुमार अवस्था में एक दिन उन्होंने जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, यद्यपि उनका मन में कुछ भावना अलग होगा, लेकिन ध्रुव के मन में उनके उत्तम प्रति बहुत प्रेम था, ये मेरा भाई है, अपना मानते थे, सब कुछ सुविधा दे कर रखे थे। तो उन्होंने एक बार उन्होंने जंगल में शिकार खेलने गए, और शिकार करते करते झगड़ा हो गया जख्यों के साथ, वो जंगल में जख्खे लोग आए थे, जख्खे लोग मनुष्य से बहुत ऊँच कोटि के थे, वो लोग आए थे उनके साथ, वो तो डेमका में रहता है, मेरा भाई राजा है, डर नहीं रहता किसी, तो उनके साथ झगड़ा किया, लड़ाई किया, उनको क्या पता कि जख्खे जख्खे लोग बोले बदमाश तू मनुष्य होकर के हमारे साथ बैटिंग कर, मार दिया उसको, मर गया, मर गया जंगल में, तो उसको आया नहीं बेटा करके उनके माँ सुरुचि ने जंगल में गया ढूंढते ढूंढते, अब जा करके पुत्र का डेंगू मर के पड़ा है, चिल्ला कर जा रहा था, शेर आया उसको खा गया, किसको खा गया, सुरुचि को खा गया, दोनों माँ बेटा के काम जंगल में हो गया कोई उनके करने वाले नहीं रहे। तब ये खबर जब मिला कुमार ध्रुव को तो उन्होंने बड़े क्रोधित हुए, जक्षपुरी के ऊपर अटैक किए जाकर के, क्यों मेरे भाई कुमार अलकापुरी के ऊपर अटैक कर दिया जाकर कुबेरपुरी में, भयानक युद्ध हुआ। बड़े पन्नू नायक आ गए, इसे तो आकर के साक्षात ब्रह्मा जी के समझाएंगे, फिर समित होंगे। भगवत कृपा से उनका शक्ति कुछ कमी नहीं था, वहां शक्तिमान था। उन्होंने जख्य लोक ने अपने पूरा माया लगाया उनके सामने, लेकिन वो तो भगवत कृपा से जो प्राप्त किए माया क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर पाया। तो उन्हें फिर वापस आते हैं, फिर राज्य करते हैं। अनेक साल राज्य करने के बाद हजार वर्ष जब फिर राज्य से छोड़ करके जाते हैं बद्रीनाथ जाते हैं, बद्री का क्षेत्र बद्री का आश्रम में जाकर के वहां फिर तपाचरण करते हैं, वहां तपस्या करके रत्नंदा के किनारे जब तपस्या करते हैं तब समय आ जाता है उनका, उनका यहाँ का समय पूरा हो जाता है। और तब सरयाम पवित्र रह जाए तो भगवान वैकुंठ से अपना गाड़ी भेजते हैं, अपने आदमी भेजे हैं विष्णुदूत के, विष्णुदूत गाड़ी लेकर वैकुंठ के विमान लेकर आते हैं। वो वहां पे बद्री का क्षेत्र में आकर उतरता है, तो वहां पर उनको आकर बोलते हैं, वो स्नान करके तर्पण कर रहे थे, देखे कि सूर्य जैसा चमकीला रथ एक आ रहा है गाड़ी, और उसमें भगवान विष्णु जैसे लोग आ रहे हैं, समझ गए कि विष्णुदूत के रथ आया करके। वो लोग सीधा उनके पास आए, आकर उनकी वंदना किए, वंदना करके चले गए। थोड़े में काम ठीक है, उनके क्या करते हैं आश्रम में काम करके आइए, आइए बोले कि आइए बैठे। तो उनको बुलाया रथ में बैठने के लिए, तो क्योंकि धरती पर थे मृत्यु लोक में थे, अब यही शरीर में कैसे चले जाएंगे, जाने के लिए दूसरे लोक को शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, सुखम शरीर में है ना। तो मृत्यु देवता आ गए, आकर बोले साहब आप ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में आप कैसे कैसे जाएंगे, मर के जाइए आप, इसी शरीर छोड़िए फिर जाइए, ये वैकुंठ गाड़ी का वैकुंठ का विमान है, उसमें चढ़ने के लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा भाई। आकर ध्रुव महाराज के सामने बोले आप ये नियम कैसे बेनियम करते हैं, आप ये शरीर में कैसे जाएंगे। जब मृत्युदेव आकर खड़े हो गए तो ध्रुव महाराज ने सर अपने पैर उठाए, उनके सर के ऊपर रखे, ऊपर चढ़ गए गाड़ी, एक एक पैर उनके सर में रखे, दूसरा पैर वैकुंठ विमान पर रखे, उनके सर के ऊपर स्टेप लेकर वे चढ़ गए। मृत्युदेव खड़े हुए देखने गए क्या, और जब वैकुंठ में बैठे तब उनके याद आया उनके माँ का, और वैकुंठ दूत को विष्णु दूत को पूछे बोले थोड़ा गाड़ी रुकी, थोड़ा रुकी ना, क्या ना मैं भूल गया, मेरे माँ के बात याद आता है, जिन्होंने जिनके कृपा से मैंने आज स्थिति को प्राप्त किया उनका मैं खबर ले नहीं पाया, उनके बारे में पता लगाता हूँ तो कहाँ है, उनके साथ में लेकर जाऊँगा। जब ये सब बात कहे तो विष्णुदूत कुमार ध्रुव कहते हैं कि हे कुमार आप क्यों चिंता करते हैं, क्यों मेरे मान है ना, इसीलिए तो आपका टिकट तो वेटिंग लिस्ट में था, उनका कंफर्म पहले हो चुका था, उनका कंफर्म टिकट था ना, कैसे ना वो देख रहे हैं दूसरे गाड़ी जा रहे हैं, इसी में जा रहे हैं आपसे आगे जा रहे हैं ना, कैसे हो तो जब तक साधन ना उनको कुछ नहीं करना जरूरत है, आपके शरीर के साथ संपर्क है इसी कारण से उनका टिकट पहले हो गया, इसलिए उनका टिकट पहले हो गया, वो जा रहे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप चलिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी कुल में किसी परिवार में किसी घर में कोई एक बेटा बेटी कोई भगवान के सच्चे भक्त हो जाए तो शास्त्र कहते हैं क्या फायदा होगा उसमें, कुलं पवित्रा जननी कृतार्था वसुंधराश्च वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति जेसाम पितरं च स्वर्गे जेसाम कुले वैष्णव नाम धेयम्। जिनके कुल में परिवार में एक बेटा सच्चे भक्त बन गया विष्णु के, तो इमीडिएटली कुलंग पवित्र, उनके कुल ही पवित्र हो जाएगा, भले किस प्रकार का कुल। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार के थे, अभी भी हम पूजा करते राम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। कुल पवित्र हो, कुलंग पवित्र, और क्या होगा ना, जननी कृतार्थ, जिस माँ के पुत्र है इस जननी कृतार्थ हो जाएगी, उनके माँ होने का मातृत्व ही सिद्धि हो जाएगी। जननी कृतार्थ वसुंधरा से बस, वो जो इलाका में उनका जन्म हुआ था, जो एरिया में, जो डिस्ट्रिक्ट में, जो कस्बा में, इस क्षेत्र तो तीर्थ बन जाएगा तीर्थ। अभी देहू जाइए, लोग जाके दर्शन करते हैं, क्यों, एक भक्त हो गए, एक वैकुंठ पुरुष हो गए, इसलिए उस क्षेत्र ही पूज्य तीर्थ हो गया, उस क्षेत्र ही तीर्थ वसतिस्थ धन्य, वो वसति धन्य हो। नृत्यंति जैसाम पितरंत स्वर्ग, और उनके जो पुराने पुराने पीढ़ी पितर लोग, वो तो सीधा बाईपास करके स्वर्ग जाकर नाचेंगे, बोले वाह हमारे कुल में परिवार में से ऐसा लड़का हुआ जो हमको डायरेक्ट पास करवा दे, अब कुछ नहीं सीधा फ्री पास मिला हमको, वो नाचेंगे। अगर एक कोई भक्त हो जाए, तो अगर हम लोग आजकल माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा हो बेटी हो अगर विदेश जा करके अमेरिका जाकर पढ़ ले तो हमको कृतार्थ हो जाए, भले वो जाकर या शराब खाए, दुष्चरित्र हो जाए, कुछ करे मरे, लेकिन बोलते हम कुछ ये सब माया के प्रभाव है। लेकिन सचमुच अगर किसी प्रकार से कोई विष्णु भक्त कोई हो जाए, भगवान भक्त हो जाए, तो वो तो उनके कर्म, उनके धर्म, उनके चरित्र, उनके काय सब कुछ पवित्र शुद्ध हो जाएगा, और उनसे जो जो संपर्क रखते हैं सभी का भी प्रभावित हो जाएगा, सब प्रभाव हो जाएगा। इस प्रकार आज महाराज ध्रुव जो बालक अवस्था में केवल 5 साल के आयु में अपने जननी के उपदेश को प्राप्त करके एक पिता के प्रति जो उनके दुर्व्यवहार जो गुस्सा हुआ उसके बदला लेने के लिए इतने प्रकार दृढ़ता के साथ जा करके तप किए 6 महीना में और कृतार्थ होकर के आए, और इसके बाद में राजा बने, उनके जो चरित्र है इसके द्वारा हम सभी को ये बहुत बड़ी आशा, एक उमंग प्राप्त होना चाहिए कि क्यों नहीं हम भी कर सकते। वो जब 5 साल के लड़के इतना कर पाए तो ठीक है, हम 50 साल के होंगे, इतने तो नहीं, उसके 50 गुना काम तो कर सकते हैं, कुछ तो कर पाएंगे, कुछ भी सही। वो सत्य युग में थे, कली युग है, लेकिन फिर तो होगा। तो ये आशा रख करके, और भक्ति में तो ऐसा है, आप अगर किए बोले भक्ति हम करेंगे, अगर कर नहीं पाए आधा से मिट गया तो भगवान गारंटी देते हैं, सुचिताम सीमतांगे है जोग भ्रष्ट भी जायते। अगर आप जोग में लग गया, रास्ता में जोग पूरा नहीं कर पाया, भ्रष्ट हो गया, तो दोबारा चांस मिलूंगा। श्रीमताम सुचिमताम ऐसे पवित्र ब्राह्मण परिवार में, भक्त परिवार में तुझे जन्म दूंगा, ताकि भक्ति फिर पूरा कर पाओ। ये चांस भगवान देते हैं, गारंटी देते हैं। तो इसलिए निर्भय हो करके, हर प्रकार से आशा रख करके, केवल भगवान के भजन में ही मन निवेश करना चाहिए, यही एकमात्र कर्तव्य है। इसी में ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूर्ति होता है, इसी के लिए ही वास्तविक हम के शरीर, ये मन, ये बुद्धि और इंद्रिय प्राप्त हुआ, यही उसका सदुपयोग है। हरे कृष्ण।